बहुत बहुत धन्यवाद विशु भाई। रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा सादर सप्रेम साई राम। यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आप सभी को हमारे आज के साप्ताहिक सीधे प्रसारण के अंतर्गत हिंदी भाषा में होने वाले प्रसारण पर आमंत्रित करता हूं। प्रिय श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम में श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा स्वामी के समक्ष प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के क्रमवार पाठ के अगले भाग के पश्चात स्वामी के दिव्य संदेश के एक निश्चित भाग का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें उन्होंने शिरडी साई बाबा जी के जीवन पर प्रकाश डाला है। कार्यक्रम के दौरान दो गीतों का प्रसारण भी किया जाएगा। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा साई कुलवंत हॉल में 17 मार्च सन 2010 से प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के क्रमवार पाठ के अगले भाग की प्रस्तुति से।
अभी तक तो भगवान वृंदावन में रहे हैं, लेकिन अब भगवान पूरे विश्व के रूपांतर के लिए उद्यत हुए हैं, इसलिए भगवान भी गुरुकुल को स्वीकार करते हैं और अवंतिका में जाकर भगवान सांदीपनी मुनि के यहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। भगवान ने जो जो विद्याएं वहां रहकर, भगवान तो स्वयं विद्या स्वरूप हैं, भगवान तो स्वयं ही ज्ञान है ना, भगवान तो स्वयं ही अनुभूति है ना, लेकिन भगवान सांदीपनी मुनि के पास जाकर वेदों का अध्ययन करते हैं, देव भाषा का विधिवत अध्ययन करते हैं, दर्शनों का अध्ययन करते हैं, राजनीति का अध्ययन करते हैं, शस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं, और वहीं भगवान की मित्रता एक ब्राह्मण बालक से हुई है जिसका नाम है सुदामा। वहीं भगवान की और सुदामा की मित्रता हुई है, गुरुकुल में दोनों में बड़ा स्नेह है, भगवान और सुदामा साथ में ही रहते हैं। सुदामा भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं और भगवान भी सुदामा से अनन्य प्रेम करते हैं। सुदामा जरा स्वाभिमानी स्वभाव के हैं, सहज रूप से कुछ बोलते नहीं, सहज रूप से कुछ मांगते नहीं, दोनों ही साथ में रहते हैं। भगवान गुरुजी से जब विद्या, भगवान की विद्या पूर्ण होती है तो भगवान गुरुजी से कहते हैं कि गुरुदेव आपको दक्षिणा में क्या दूं, आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने मुझे बोध दिया, आपने मुझे आनंद दिया। भगवान गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव ज्ञान का तो ऋण चुकाया नहीं जा सकता, ज्ञान का ऋण तो अनमोल है, ज्ञान तो सबसे विशेष है, स्वयं नारायण भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि वंदे गुरु परंपरा। गुरु कौन है जो हमें रास्ता दिखाते हैं, गुरु कौन है जो हमें मार्ग दिखाते हैं। अगर हमारे गुरु वृद्ध हो जाए और जब शिष्य युवा हो जाता है और जब गुरु मार्ग में मिले और शिष्य जब गुरु को प्रणाम करता है तो गुरु की अंतरात्मा को इतनी प्रसन्नता होती है। अपने लगाए वृक्ष को बड़ा होता देख, फलदार होता देख, प्रत्येक गुरु को आनंद होता है। श्री गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु माता ने कहा, हे साई कृष्णा, हमारा एक बालक था जो समुद्र में डूब गया था, अगर उस बालक को दिखा दो तो बड़ा आनंद हो जाएगा। भगवान ने कहा, गुरु माता आप कैसी बातें कह रही हैं, दिखाना नहीं, मैं आपका बालक लेकर आऊंगा। और श्री भगवान समुद्र में जाकर राक्षस का वध कर गुरुपुत्र को लाकर गुरुदेव को समर्पित करते हैं। और भगवान लौटकर मथुरा आते हैं। हंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। अस्ति का अर्थ है ऐसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, प्राप्ति का अर्थ है हमें ही प्राप्त हो, दूसरे को प्राप्त ही ना हो। आप देखें जितनी भी प्रकार की उपचार पद्धतियां हैं वे कहती हैं कि पहले बीमार हो फिर हम स्वस्थ करेंगी, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि जीवन ऐसा बनाओ, जीवनचर्या ऐसी बनाओ, अपने चिंतन और अपनी मानसिकता को ऐसा शुद्ध और निर्मल बनाओ, जीवन इतना संयमित बनाओ कि आप बीमार ही ना हो। जब बीमार ही ना हो तो उपचार की आवश्यकता ही क्या। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवे। जीवन इतना सुंदर हो, जीवन इतना निर्मल हो, जीवन इतने आनंद से भरा हो, और विचारों की सुंदरता का प्रभाव देह पर पड़ता है। अस्वस्थ विचारों के व्यक्ति का देह भी स्वस्थ नहीं होता। इसीलिए आधुनिक विज्ञान देह की चिकित्सा करता है, लेकिन प्राचीन भारतीय ऋषि दर्शन और भारतीय आध्यात्मिक मनोविज्ञान मन की चिकित्सा करता है। भगवान ने अर्जुन को ऐसा गहरा सूत्र दे दिया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य परमसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, आहार कैसा हो, संयमित हो, हमारी चर्चा भी संयमित हो। ऐसा नहीं व्रत किया तो ऐसा व्रत किया कि बिल्कुल शरीर को गला ही लिया, और भोजन किया तो ऐसा किया कि अस्पताल में भर्ती हो गए। भगवान गौतम बुद्ध को जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार से प्राप्त हुआ? उन्होंने वर्षों तक साधना की, अनेक प्रकार की साधनाएं की, मुंह में पत्थर रखा, खड़े रहे, जिसने जो रास्ता बताया भगवान बुद्ध ने वही किया, लेकिन महाबोध की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मज्ञान नहीं हुआ। एक दिन भगवान बुद्ध व्यथित थे और बैठे हुए थे, तो दूर से एक बालिका जा रही थी जो एक गीत गाते हुए जा रही थी। बालिका जो गीत गा रही थी वह गीत था कि तंबूरे के हार को इतना भी मत खींचो कि वह टूट जाए, और इतना भी ढीला ना रहे कि बज ही ना पाए। और यहां से गौतम बुद्ध का समता का मार्ग प्रारंभ होता है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्णा अवतार में प्रतिपादन बड़े सुंदर ढंग से प्रदान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं युक्ताहार, आहार हमारा सीमित हो और आहार हमारा शुद्ध हो। अशुद्ध आहार अशुद्ध मन का निर्माण करता है। विहारस्य, हमारी बातचीत, हमारा मिलना जुलना, हमारा संपर्क, हमारा उठना बैठना भी संतुलित हो। जितना भी जीवन हो वो दिन का हो, रात्रि का कोई जीवन ना हो। रात्रि में सोने का एक समय हो, प्रातःकाल उठने का एक समय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान साईं कृष्ण प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, सूर्योदय के पूर्व भगवान उठते हैं, स्नान करते हैं, स्वयं संध्या करते हैं। संध्या यैना न विज्ञात, संध्या यैना नृपाश्रित, जीवन नेव भवे शूद्रो मृतः श्वाचाभिजायते। संध्या करने से व्यक्ति की शक्तियों का विस्तार होता है। संध्या करने से व्यक्ति का मानसिक बल बढ़ता है, संध्या करने से हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। सबसे पहले भगवान स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, फिर नगर के जो साधारण लोग हैं उनसे मिलते हैं, उसके बाद राज्यसभा में जाते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, हमारी जो चेष्टाएं हैं ना वो भी संतुलित रहे। न जग छोड़ो न हरि छोड़ो, भगवान बाबा का मार्ग यही है जो समाज के बिल्कुल भीतर से जाता है। न जग छोड़ो न प्रभु छोड़ो, रहो यू जिंदगानी में, कमल का फूल जैसे रहता है पानी में। ना तो संसार को छोड़ना है, क्योंकि यदि संसार छोड़कर जाएंगे तो जहां जाएंगे वहां एक नया संसार बना लेंगे। संसार तीति संसारा, जो लगातार बदल रहा है, जो लगातार परिवर्तित हो रहा है। पृथ्वी दैयते यत् मेरुश्चापि विशिर्यते, सशोराम सागर जलम तत्र का कथा। अरे जब सुमेरु जल जाता है, जब पृथ्वी डूब जाती है, तो शरीर का क्या प्रभाव है। इसलिए जितने दिन शरीर है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, संतुलित आचरण हो। अन्य के विषय में तो संत दुर्बलदास ने कहा है कि अन्य ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां हो, इंद्रियों से कर्म कर्म भोग भुगवाते हैं, अन्य ही के दूषण से तामसीले जन्म जीव, अन्य के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं, अन्य ही से वीर क्लीव क्लीव वीर होते देखे, अन्य की पवित्रता से देव खिंच आते हैं, और मृत्यु लोक से है ब्रह्म मोक्ष और बंधन का, वेद आदि मूल ग्रंथ अन्य ही बताते हैं। अन्य शुद्ध हो, अच्छी मानसिकता से बनाया जाए। यदि आप बहुत गुस्से में भोजन बनाएंगे तो जितने लोगों के भीतर वो आहार जाएगा उनको गुस्सा आएगा। और जब भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए, भगवान के दिव्य चरणों का स्मरण करते हुए आप भोजन बनाएंगे तो वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। मानसिकता का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, मानसिकता का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। और वर्तमान का मनोविज्ञान तो ये आज विकसित हुआ है, अवचेतन की बात करता है। वर्तमान का जो मनोविज्ञान है वो निचले स्तरों की बात करता है, लेकिन पूर्ण चेतन की बात तो वर्तमान मनोविज्ञान भी नहीं करता। पूर्ण चेतन की बात तो भगवान वेद करते हैं। अष्ट चक्र नवद्वार देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्य कोशा स्वर्गो ज्योतिषाव्रता। ये अयोध्या ही तो है, अष्ट चक्र नवद्वारा, आठ चक्र नौ द्वारों वाली ये अयोध्या है, और इसमें भगवान विराजमान है। सामान्य मनोविज्ञान मन के निचले हिस्सों को तो जानता है, लेकिन भारतीय वैदिक विज्ञान मन के उच्चतम स्तरों की बात करता है। तो कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, और इनके पिताजी का नाम है जरासंध। जरासंध जो किसी दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, जरासंध जो स्वयं के लिए ही जीता है। जरासंध यदि कोई यज्ञ भी करता है तो वह यज्ञ भी स्वयं के लिए करता है, और जरासंध सारे संसार को जीतना चाहता है। कौन इस संसार को जीत पाया है? अंधी दौड़ में व्यक्ति दौड़ रहा है, जिससे कहो उसके पास समय नहीं है। सिकंदर ने भी यही किया था ना, पूरी दुनिया जीतने निकला था और आखिरी बार जब वो शहंशाह इस संसार से जाता है तो अपने लोगों को कहकर जाता है कि मेरी मुट्ठियों को बंद मत रखना, खोल के रखना, ताकि दुनिया वाले भी देख सकें कि सिकंदर भी गया तो खाली हाथ गया, कुछ लेकर नहीं गया। वे दोनों जरासंध के पास गई और जरासंध के पास जाकर कहा, पिताजी, श्री कृष्ण और बलदाऊ ने महाराज को मार डाला, महाराज का तो उद्धार हो गया, लेकिन उनके शब्द हैं मार डाला, तो जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है। सत्रह बार युद्ध होता है भगवान का और जरासंध का, पर लीला अवतारी है भगवान। शौन को हवेश महाशालो अंगी रसम विधिविध उत्सन्न प्रपच्छा कस्मिन्नु भगवो विज्ञायते सर्वमिदं विज्ञातं भवती थी अस्मिन् द्यौ पृथ्वी च आंतरिक्ष मौतम मनः च प्राणश्च सर्वे तमै वैकम जानत विदित्वान मन्या वाचो विमुंच था मृतस्येष सेतु। जिसने ब्रह्मांड का सृजन किया है, जिसने ब्रह्मांड के नियम बनाए हैं, वो अपनी शक्ति से उन नियमों को बदल भी सकता है। सत्रह बार भगवान युद्ध करते हैं, अब की बार अठारहवीं बार वो अकेला नहीं आया है, काल यवन को साथ में लेकर आया है। ध्यान रखिए, जीवन में एक दोष हजारों दोष लेकर आता है और जीवन में एक सद्गुण अनेक सद्गुण लेकर आता है। जीवन में एक बुरी आदत हजारों बुरी आदतें साथ में लेकर आती हैं और जीवन में एक अच्छी आदत हजारों अच्छी आदतें लेकर आती है। इसीलिए स्वभाव के रूपांतर के लिए छोटी छोटे अच्छे सद्गुण जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। दवाई इतनी सी होती है लेकिन वो पूरे शरीर के बुखार को दूर कर देती है। जहर इतना सा होता है और वो पूरे शरीर को रोगग्रस्त कर देता है। और मन अस्वस्थ होता है बुरे वातावरण में रहने से, बुरे चित्रों को देखने से, बुरे साहित्य के अध्ययन से और उन लोगों के बीच में बैठने से जिनका अपना कोई व्यक्तिगत जीवन है ही नहीं, जिनकी कोई व्यक्तिगत मानसिकता है ही नहीं, जिनके जीवन में सिद्धांत है ही नहीं, जो हर क्षण सिद्धांत बदलते हैं, हर क्षण सिद्धांतों से समझौता करते हैं और जिनके जीवन का उद्देश्य है खाओ पियो, बस यही जीवन का उद्देश्य है, खूब कमाओ, भोजन करो, अपना पेट भरो, अपना घर बना लो, जिन्हें ना भगवान समझ में आते हैं, न सेवा समझ में आती है और न ही जीवन का दूसरा अर्थ समझ में आता है। जीवन एक अर्थी नहीं है। दायित्व निभाते हुए भी निरंतर आध्यात्मिक विकास के लिए, निरंतर दैवीय प्रकाश के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। तो जरासंध पालयवन को लेकर आया है और धन्य है श्री भगवान को, जब युद्ध करते हैं तो भक्त कहते हैं रणराय, और कई बार युद्ध करते करते लीला ऐसी करते हैं कि युद्ध छोड़कर भगवान भाग गए, तो भक्तों ने कहा कि रणराय भगवान की जय, और जब भगवान युद्ध छोड़कर जा रहे हैं तो भक्तों की भी बलिहारी, वे कह रहे हैं कि रण छोड़ भगवान की जय। रण छोड़कर जा रहे हैं तो रणछोर कहला रहे हैं, और जब रण में लड़ रहे हैं तो रणराय कहला रहे हैं। पाल यवन तो भगवान के पीछे लगा है, उसने सोचा कि आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। लीला करते करते प्रभु उसको उस दिव्य गुफा में ले जाते हैं जिसमें महाराज मुचकुंद बरसों से सोए हुए हैं। देवासुर संग्राम में महाराज मुचकुंद को देवराज ने बुलाया था। जब महाराज से पूछा देवराज इंद्र ने कि आपकी इच्छा क्या है, तो महाराज मुचकुंद ने कहा कि देवराज, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा राज्य। देवराज इंद्र ने कहा, महाराज मुचकुंद, अब पृथ्वी पर तो समय बदल गया, स्वर्ग के समय में और पृथ्वी के समय में बहुत अंतर है। वो समय तो निकल गया, अब तो कुछ संभव ही नहीं है। महाराज मुचकुंद बड़े दुखित हुए। महाराज मुचकुंद विलाप करने लगे, और जैसे ही महाराज मुचकुंद दुखी हुए, देवराज ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, राजन, आपकी कोई इच्छा हो तो मेरे समक्ष व्यक्त करें। राजा ने कहा कि देवराज, मैं युद्ध युद्ध और युद्ध लड़ लड़कर मेरा पूरा शरीर निस्तेज हो गया है। राजन, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं, मैं निद्रा लेना चाहता हूं, और ऐसी निद्रा जिसमें कोई व्यवधान न डाले। तो देवराज ने राजा मुचकुंद को दो आश्वासन दिए। आश्वासन वरदान तो भगवान बाबा देते हैं, देवता तो आश्वासन देते हैं, और उनके आश्वासनों को पूर्ण करते हैं श्री भगवान। एक तो यह आश्वासन दिया कि राजन, जो भी आपको सोते में जगाएगा वो भस्मीभूत हो जाएगा, आपकी दृष्टि गिरते ही वो जल जाएगा। और दूसरा, राजन, सोते ही रहना अच्छी बात नहीं है, जागरण भी अनिवार्य है। निद्रा, तंद्रा और भय ये व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। भोगे रोग भयम् कुले च्युति भयम् रूपे जराया भयम् शास्त्रे वाद भयम् बले खल भयम् काये नृपान्तार्भयम् मौने दैन्य भयम्। अगर बहुत बलवान हो तो युद्ध का भय है, यदि बहुत शक्तिशाली होना तो युद्ध का भय है, यदि विद्वान हो तो शास्त्रार्थ का भय है, यदि युवा हो तो वार्धक्य का भय है, यदि सुंदर हो तो असुंदर होने का भय है। प्रत्येक वस्तु संसार की भय से भरी हुई है। सर्व वस्तु भयान्वितं ब्रूहि नृणाम् वैराग्यमेव भयम्। संसार की प्रत्येक वस्तु भय से युक्त है। एक श्री भगवान का नाम और एक वैराग्य, ये दो ही चीजें व्यक्ति को निर्भय बनाती हैं। इसलिए जब सन्यास की दीक्षा ली जाती है तो सन्यासी कहता है कि अब मैं सबसे अभय हो गया और सब मुझसे अभय हो जाएं। अब मैं सबसे अभय हो गया और सब मुझसे अभय हो जाएं। अब ना मुझे किसी से भय है और ना ही किसी दूसरे को मुझसे भय है। मुचकुंद उस दिव्य गुफा में बरसों से विश्राम कर रहे हैं। देवराज ने कहा है, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे, उनके दर्शनों से राजन आपको आगे का मार्ग मिलेगा। भगवान कालयवन को दौड़ाते 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 उस दिव्य गुफा के भीतर ले जाते हैं जहां महाराज मुचकुंद विश्राम कर रहे हैं। युगों युगों की निद्रा में है, शताब्दी शताब्दियों की निद्रा में है, और भगवान तो छुप जाते हैं। और मुचकुंद देखता है कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। मुचकुंद ने सोचा कि यही है कृष्ण, यही है। तो मुचकुंद जोर का कालयवन जोर का प्रहार करता है मुचकुंद पर। महाराज मुचकुंद तो लेटे हैं, भगवान पीछे छुप गए, और कालयवन एक जोर का प्रहार करता है महाराज मुचकुंद पर, और जैसे ही महाराज मुचकुंद के नेत्र खुलते हैं, कालयवन को देखते हैं, वो भस्म हो जाता है। तो भगवान साईं नारायण सामने आते हैं। ओहो, श्री वत्स लक्ष्मी कृतरत प्रदेश, पूरी गुफा में प्रकाश हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है, गुफाओं की शिलाओं से वेद ध्वनि गूंजने लगती है, ओंकार का स्वर गूंजने लगता है। भगवान आते हैं तो वेद ध्वनि होती है, भगवान आते हैं तो ओंकार होता है, वृक्ष वनस्पतियां देवी देवता सब उनके स्वागत में उनके अभिवादन में ओंकार करते हैं, वेद पाठ करते हैं। महाराज मुचकुंद ने देखा कि पूरी गुफा में एक नीला प्रकाश हो गया है और सामने मोर मुकुट वाले घुंघराले बाल वाले अधरों पर लालिमा है, नैनों में गहनता है और चेहरे पर हास्य विस्मित मुस्कान है, ये कौन है? अनेक बार सामान्य व्यक्ति को अवतार के रहस्य को जानने में समस्या होती है, लेकिन महापुरुषों को समस्या नहीं होती। पिछले साल हरिद्वार गए तो ऋषिकेश जाने की इच्छा हुई, भगवान दादा की कृपा से हर साल हरिद्वार इस दिव्य कथा के लिए जाने का भाग्य मिलता है। किसी से सुना कि श्री शिवानंद आश्रम का उद्घाटन हमारे भगवान ने किया था, तो मन में इच्छा जागी कि उस आश्रम का दर्शन कर आए जहां हमारे भगवान पहुंचे थे, जहां हमारे भगवान बाबा पहुंचे थे। और जब उस आश्रम में गए तो पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम किया। अवतार को इतनी जल्दी जान गए, अवतार को इतनी जल्दी समझ गए और उस धरा को प्रणाम किया कि धन्य है तू भूमि, यहां पर तो स्वयं नारायण ही चलकर आए, धन्य है आश्रम जिसका उद्घाटन स्वयं भगवान ने किया। मुचकुंद ने पूछा आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं नारायण हूं। मुचकुंद तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं आया हूं, कोई वरदान चाहते हो? मुचकुंद ने कहा प्रभु अब तो मैं निर्वाण चाहता हूं, निर्वाण का अर्थ है भगवान में विलीन हो जाना। भगवान ने मुचकुंद पर अनुग्रह किया और मुचकुंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई। बार बार के आक्रमणों को देखते हुए भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया द्वारिका बसाने के लिए। सुंदर द्वारिका का निर्माण हुआ, स्वर्णमयी द्वारिका। और विदर्भ के राजा हैं भीष्मक, उनके पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाल। और रुक्मी की मित्रता शिशुपाल से है। महाराज भीष्मक की एक कन्या भी है रुक्मणी, और रुक्मणी ने साई सुंदर के सौंदर्य का बहुत वर्णन सुना है, साई कृष्णा के सौंदर्य का बहुत वर्णन सुना है, भगवान के गुणों के विषय में सुना है। चूंकि रुक्मी रुक्मणी का ब्याह शिशुपाल से करना चाहता है और रुक्मणी भगवान से ब्याह करना चाहती हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता को एक पत्र लेकर भेजती हैं, हे नाथ आपकी दासी आपके चरणों का आश्रय चाहती है, हे दीन बंधु यदि मेरा ब्याह आपके साथ नहीं हुआ तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, मैं शिशुपाल से ब्याह नहीं करूंगी। शक्ति शिव को आमंत्रित कर रही है और भगवान ब्राह्मण देवता को कहते हैं कि रात्रि को आप यहीं विश्राम करिए। रात्रि को ब्राह्मण देवता द्वारिका में विश्राम करते हैं और प्रातःकाल श्री भगवान ब्राह्मण देवता को लेकर जब कुंडलपुर जाने लगते हैं, विदर्भ जाने लगते हैं, तो बलदाव जी रस्ते में कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो कन्हैया? भगवान कहते हैं बस वहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहा हूँ। शर्मा जाते हैं भगवान। अब बड़े भैया से कैसे कहे, कहाँ जा रहे हो? बस वहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बस वहीं जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता वो पत्र बलदाव जी के हाथ में थमा देते हैं। बलदाव जी पत्र खोल कर देखते हैं कि अरे ये चिंता तो मुझे करनी चाहिए थी, पर देखो ये चिंता भी कन्हैया को खुद करनी पड़ रही है। और फिर भगवान रथ के द्वारा कुंडलपुर पहुंचे, विदर्भ पहुंचे, पीछे से बलदाव जी भी पहुंचे, थोड़ी बहुत सेना भी बड़े भैया लेकर गए हैं। और भगवान जब विदर्भ पहुंचते हैं तो रुक्मणी जी के बाएं अंग फड़कने लगते हैं। बाम अंग फड़कने लगे, माताओं के बाएं अंग, पुरुषों के दाएं अंग यदि फड़कते हैं तो शुभ होते हैं। वास्तविकता क्या है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ऐसा प्रमाण मिलता है कि उनके बाएं अंग फड़कने लगे। और बाएं अंग जब फड़कने लगे तो उन्हें लगा कि निश्चित अब कुछ शुभ होने वाला है। और ब्राह्मण देवता समाचार लेकर आए रुक्मणी के पास कि साईं सुंदर आ गए हैं, भगवान आ गए हैं। रुक्मणी ने सुना कि भगवान आ गए हैं तो कहा उनसे कह देना कल मैं गौरी पूजन करने के लिए जाऊंगी, बस वहीं से मुझे लेकर चले जाएं। और शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाल सबने भगवान के विरोध के लिए पूरा इंतजाम किया है। रुक्मणी जी अगले दिन गौरी पूजन करने जा रही हैं। रुक्मणी जी को 10,000 सखियों ने घेर रखा है और 10,000 सखियों को 10,000 सैनिकों ने घेर रखा है। मंदिर के अंदर जा रही हैं। तू काली रे कल्याणी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया, तू परतीश्वरी महा रानी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया, हो तू शुंभु निशुंभु मर दानी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया, हो तू परती में प्रगटानी रे माए, जाऊं जोम त्वा जोग माया। प्रार्थना करती हैं, हे भगवती जैसे आपको भगवान शिव की प्राप्ति हुई। जय जय गिरी बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, भव भव विभव पराभव कारिणी, जगत विमोहिनी स्वबस निवाहिनी, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और इतने में भगवती के विग्रह से एक पुष्प गिरता है नीचे, यानी अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और जैसे ही रुक्मणी जी गौरी पूजन कर बाहर आती हैं, तो भगवान सारे सैनिकों को हटाते हुए, सखियों को हटाते हुए रुक्मणी का हाथ थामते हैं। और जैसे ही सारे सैनिक श्री भगवान को मारने के लिए दौड़ते हैं तो भगवान क्या करते हैं पता है? भगवान उन सब सैनिकों को देखकर मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। एक कहता है हाय रे देखो तो सही इसके घुंघराले बाल कितने सुंदर हैं, दूसरा कहता है देखो तो सही इसके होंठ कितने सुंदर हैं, तीसरा कहता है देखो तो सही इसके गाल कितने सुंदर हैं, चौथा कहता है कि मोर मुकुट तो देखो, पांचवा कहता है कि कानों के कुंडल तो देखो, छठा कहता है इसके गले की माला तो देखो, सातवा कहता है मूर्खो वो रुक्मणी को लेकर भाग गया। जहाना काम चलता था तीर और कृपाणों से, विजय भगवान की होती है वहां मुरली की तानों से। जहां बड़े बड़े हथियार हार जाया करते हैं, जहां बड़े बड़े शस्त्र हार जाया करते हैं, वहां भगवान मुस्कुराकर जीत जाते हैं। इसलिए कहा वल्लभाचार्य जी ने, अधरम मधुरम नैनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनके अधुर मधुर हैं, उनके नयन मधुर हैं। वृष्टि मधुरा यष्टि मधुरा चित्रा मधुरा यमुना मधुरा मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। प्रभु का सब कुछ मधुर है, भगवान का रोम रोम मधुर है, भगवान का अंग प्रत्यंग मधुर है। अब रुक्मी भगवान का पीछा कर रहा है, देखिए भगवान का पीछा कर रहा है। भगवान ने कहा इससे लड़ ही लिया जाए, ये बार बार परेशान कर रहा है। भगवान लड़े, ऐसा युद्ध हुआ, भगवान ने रुक्मी को पकड़ा और मारने के लिए उद्यत हुए। बलदाव जी कहते रुको रुको, क्या कर रहे हो? विवाह के दिन धर्म पत्नी के भाई की हत्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करना, ये हमारा रिश्तेदार है। हमारे मध्य प्रदेश में भगवान बाबा कहा जाता है ब्याई, ब्रज भाषा में भी ब्याई कहा जाता है। ब्याई को बहुत सम्मान दिया जाता है और तुम तो शादी के दिन ही ब्याई को मार रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान को फिर भी गुस्सा तो आया, तो पता है क्या किया? रुक्मी के आधे बाल उड़ा दिए, आधी मूछ उड़ा दी, कहा आराम से जाओ। क्या भवानी से विवाह का सामर्थ्य है शिशुपाल में? क्या जगत जननी को ब्याह सकता है शिशुपाल? नहीं, वो तो नारायण की आध्या शक्ति है, भगवान की चिति शक्ति है। और फिर भगवान द्वारिका पहुंचते हैं और द्वारिका जाकर भगवान का विधिवत विवाह होता है। ब्रिज में भगवान के विवाह के अनेक गीत गाए जाते हैं, भगवान के विवाह में बहुत आनंद लिया जाता है। तो इतना कहकर सभी वाक के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परात्पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा वेद पुरुष प्रेमावतार पूर्णावतार हम सबको आनंद देने वाले प्रतिपुरुषवर भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरणों में समर्पित, ओम शांति शांति शांति, ओम श्री साई राम, जय साई राम।
साई राम, यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। अभी आप श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा स्वामी के समक्ष साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के क्रमवार पाठ का अगला भाग सुन रहे थे। यह कथा प्रवचन उन्होंने 17 मार्च सन 2010 से दिया था। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है साई ब्लॉसम्स द्वारा निर्मित सीडी नाद ब्रह्म भाग 2 से लिया गया एक भजन।
सुंदर शाम नयन भीरा Thank you.
साईराम, यह रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। इस भजन के बाद अब प्रस्तुत है स्वामी के दिव्य संदेश से लिए गए एक निश्चित भाग का प्रसारण, जिसमें उन्होंने शिरडी साई बाबा के जीवन चरित पर प्रकाश डाला है। पूर्व में शिरडी के साई बाबा की जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में किसी को सही ज्ञान नहीं था। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। अपने एक संभाषण में स्वामी ने शिरडी साई के जन्म की परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि उनके जन्म स्थान और जन्मदिन की भी घोषणा कर दी है। स्वामी का यह संभाषण सनातन सारथी पत्रिका के नवम्बर 1990 के अंक में प्रकाशित हुआ था। अपने संभाषण में स्वामी बताते हैं कि शिरडी साई का जन्म पतरी नामक ग्राम में 28 सितंबर 1835 को हुआ था और सन 1918 में उन्होंने समाधि ली थी। प्रस्तुत है स्वामी के संभाषण का हिंदी अनुवाद।
समय बीत जाने के कारण और परिस्थितियों के बदल जाने के कारण शिरडी बाबा के जन्म और मृत्यु की सही तिथियों का किसी को ज्ञान नहीं था। शिरडी बाबा के जन्म से जुड़ा रहस्य जानना चाहिए। एक भक्त ने संस्कृत में एक कविता लिखी थी, जिसमें उसने पतरी में जन्मे और द्वारका माई में निवास करने वाले साईं को प्रणाम कहा था। गंगा भवदया और देवगिरी यम्मा पतरी गांव में रहते थे। ईश्वर और पार्वती के भक्त थे। काफी समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने अपनी तपस्या और तेज कर दी। गंगा भवदया अपना जीवन निर्वाह करने के लिए नाव चलाता था। एक रात बड़ी तेज बारिश हो रही थी। गंगा भवदया अपनी नाव की संभाल करने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि वह आज रात घर वापस नहीं लौटेगा। पति के चले जाने के बाद देवगिरी अम्मा ने भोजन जल्दी ही कर लिया और सोने के लिए चली गई। 9 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवगिरी अम्मा ने समझा उसका पति आ गया है। उसने दरवाजा खोल दिया। एक बड़ा ही बूढ़ा व्यक्ति अंदर आ गया। उसने प्रार्थना की, मां बाहर बड़ी सर्दी है, कृपया मुझे घर के अंदर आकर रहने दो। दयालु देवगिरी अम्मा ने उसे अंदर के बरामदे में रहने की आज्ञा दे दी और अंदर से कुंडी लगाकर स्वयं सोने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद अंदर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। घर में भोजन नहीं था। देवगिरी अम्मा ने दही में थोड़ा आटा मिलाया और उसे खाने को दे दिया। कुछ देर बाद एक और दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो बूढ़े ने कहा, मां मेरी टांगें बड़ी दुख रही हैं, थोड़ा दबा दो। देवगिरी अम्मा अंदर आई, पूजा घर में बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे मां, तुम इस प्रकार मेरी परीक्षा क्यों ले रही हो? मैं क्या करूं, उसकी सेवा करूं या मना कर दूं? पिछले दरवाजे से बाहर आकर वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगी जिसको उस बूढ़े की सेवा करने को कहा जाए। कोई नहीं मिला। बूढ़े ने फिर दरवाजा खटखटाया। ठीक उसी समय पिछले दरवाजे पर एक बूढ़ी स्त्री ने दस्तक दी। उसने कहा, मुझे लगता है तुम मेरे घर आई थी, किसी स्त्री को सहायता चाहिए थी। उस समय मैं घर पर नहीं थी, क्या सेवा मुझे करनी है बताओ। देवगिरी अम्मा प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि मां पार्वती ने उसकी पुकार सुन ली है, उसी ने इस स्त्री को भेजा है। देवगिरी अम्मा ने उसे बूढ़े की सेवा करने के लिए बरामदे में भेज दिया। यह बूढ़ा व्यक्ति और आने वाली स्त्री और कोई नहीं, स्वयं ईश्वर और पार्वती थे। पार्वती ने प्रसन्न होकर ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, तुम सर्वोच्च शक्तिमान हो, इस स्त्री की इच्छा पूर्ण करो। ईश्वर ने कहा, मैं इसकी परीक्षा लेने आया था, इसकी प्रार्थना तो तुम सुनकर आई हो, इसलिए तुम ही इसे वरदान दो। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार देवगिरी अम्मा ने शीघ्र ही दरवाजा खोल दिया, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी, एक और स्त्री वहां थी। पार्वती और ईश्वर ने साक्षात दर्शन दिए। खुशी की कोई सीमा नहीं थी। देवगिरी अम्मा चरणों पर गिर पड़ी। पार्वती ने उसे वरदान दिया, मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करती हूं जिससे तुम्हारा कुल चलता रहे, एक पुत्री देती हूं ताकि तुम कन्यादान कर सको। तब देवगिरी अम्मा ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हुई। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे घर तुम्हारे तीसरे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। जब देवगिरी अम्मा उठी तो देखा कि ईश्वर और पार्वती अंतर ध्यान हो गए हैं। देवगिरी अम्मा बड़ी खुश थी। बड़ी उत्सुकता से पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी ताकि उसे सारी कहानी सुना सके। प्रातःकाल होते ही उसका पति घर लौटा। पत्नी ने पिछली रात की सारी घटना उसे सुना दी। पति ने कहा, देवगिरी यह क्या काल्पनिक कथा है, यह तुम्हारा स्वप्न मात्र है। पार्वती और ईश्वर आए और तुम्हें दर्शन दिए, यह कैसे संभव है? कोरी कल्पना है। गंगा भवदया इस घटना को अविश्वसनीय और कोरी कल्पना समझकर भूल गया। वर्ष बीत गए। देवगिरी अम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक वर्ष बाद एक कन्या का जन्म हुआ। अब गंगा भवदया को विश्वास हो गया कि दोनों बच्चों का जन्म पार्वती और ईश्वर के वरदान का ही फल है। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम भाग्यवान हो, तुम्हें ईश्वर और पार्वती के दर्शन हुए, मेरे ऐसे भाग्य कहां? जब देवगिरी अम्मा पुनः गर्भवती हुई तो गंगा भवदया के मन में घर गृहस्थी छोड़कर ईश्वर और पार्वती की तलाश करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या के लिए जंगलों में जा रहा हूं। देवगिरी अम्मा अब 9 महीने से गर्भवती थी। पतिव्रता पत्नी होने के नाते देवगिरी अम्मा ने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। अभी कुछ ही दूर गई थी कि उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे को कपड़े के एक टुकड़े में लपेटकर मार्ग के किनारे रख दिया और पति के पीछे चल पड़ी। इन परिस्थितियों के कारण लोगों को यह पता नहीं चल सका कि बाबा के माता पिता कौन थे। एक फकीर ने बच्चे को देखा, घर लाया और उसका पालन पोषण किया। बाबा की जीवन कथा लोगों को केवल तब से पता है जब से वे शिरडी में आए। मैंने यह सारा विवरण इसलिए सुनाया क्योंकि आज शिरडी बाबा का जन्मदिन है, 28 सितंबर 1835। बाबा ने 1918 में समाधि ली। शरीर तो क्षणिक है, यह शरीर तो केवल भक्तों के लिए धारण किए जाते हैं। ईश्वर जब तक मानव रूप में अवतार नहीं लेता तब तक निराकार ईश्वर में विश्वास नहीं होता। मानव रूप में भगवान मनुष्य को निराकार ईश्वर को समझने के लिए भूमिका बनाता है।
साई राम, यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। शिरडी साई बाबा जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाले इस स्वामी के दिव्य संदेश से लिए गए इस भाग के प्रसारण के बाद कार्यक्रम के अंत में आप सुनिए एक और भजन, यह भी साई ब्लाजम्स द्वारा निर्मित सीडी नाद ब्रह्म भाग 2 से लिया गया है।
पन्नग शयना कलि अवतारा प्रदायक पाप विनाशक
इस भजन के साथ ही सीधे प्रसारण के अंतर्गत हमारा हिंदी भाषा में होने वाला आज का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। प्रिय श्रोताओं, यह रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। हिंदी में हमारा अगला कार्यक्रम पुनः मंगलवार को शाम 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा और अगला सीधा प्रसारण गुरुवार की शाम इसी समय होगा। यदि आप हिंदी कार्यक्रमों को स्वेच्छानुसार सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.radiosai.org/hindibroadcast पर जाकर उन्हें डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। आपके सुझाव एवं टिप्पणियां हमारी उत्तरोत्तर प्रगति में बहुत सहायक होती हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उन्हें ईमेल द्वारा हमें भेजना न भूलें। हमारा पता है listener@radiosai.org। श्रोताओं, रेडियो साई टीम से मैं अभिषेक अब स्वामी से आज्ञा और आप सबसे विदा लेता हूं। कार्यक्रमों की श्रृंखला को अब विशु भाई अंग्रेजी भाषा में एक बार पुनः आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी की एशिया स्ट्रीम पर हमारा सीधा प्रसारण। धन्यवाद। जय साई राम।